श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 6। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि तुपधारय। तो भगवान ने इससे पहले जो बताया है कि किस प्रकार से जगत उनमें है और वो जगत में नहीं है, उसको वो धारण से समझा रहे हैं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझमें स्थित जानो। पहले हम आचार्य श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री को देखेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को देखेंगे और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वो कहते हैं कि सारे जीवात्माएं भगवान में हैं, भगवान बोल रहे हैं, लेकिन भगवान निरासक्त हैं और पूरी तरह से स्वराट हैं उनसे, इस कारण से वो उनमें नहीं हैं। बावजूद उसके कि भगवान उनमें हैं, लेकिन भगवान उनमें नहीं हैं। किस तरह से? निरासक्ति के भाव से और इंडिपेंडेंस यानी कि स्वराट होने की दृष्टि से। तो आचार्य समझाते हैं इस उदाहरण को जो भगवान यहाँ पे दे रहे हैं कि जो वायु है वो हमेशा आकाश में रहती है, लेकिन आकाश का स्वभाव निरासक्ति का है। जो हवा का स्वभाव है, वायु का स्वभाव, वो है इधर उधर भागने का, एक जगह स्थिर नहीं रहने का, अस्थिरता का स्वभाव है, और वो हर जगह जाती है। सर्वत्र गह, इसमें यहाँ पे शब्द आया है सर्वत्र गो महान, और ये बहुत बड़े इसका जो माप है वो बहुत बड़ा है, वायु बहुत बड़ी होती है तो महान बोला जा रहा है। तो आकाश की निरासक्ति के कारण जो वायु है वो उसमें स्थित है, लेकिन फिर भी स्थित नहीं है। उसी प्रकार से आकाश बावजूद इसके कि वो वायु में है, वायु में नहीं है, क्योंकि आकाश वायु से निर्लिप्त है, निरासक्त है। उसी प्रकार से सभी वस्तुएं जो कि आकाश में की तरह होती हैं, जिनका बहुत बड़ा माप होता है और वो इधर उधर जाती रहती हैं, वो सब भगवान में हैं, लेकिन भगवान उनमें नहीं हैं, क्योंकि भगवान का भी ये निर्लिप्तता का, निरासक्ति का स्वभाव होता है। तो इस चीज़ को तथ्य के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आप प्रश्न करेंगे अर्जुन की, अभी तो आपने बोला था कि आपकी जो शक्तियाँ हैं वो अचिंत हैं, पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम। तो अगर आपकी शक्तियां अचिंत हैं तो अचिंत कैसे रह सकती हैं जब वो एक सामान्य आकाश और वायु की तरह हैं? तो उसका भी समझाते हैं आचार्य। कहते हैं कि देखिए, आकाश निरासक्त है बिकॉज उसमें चेतना नहीं है। स्वभाव से ही आकाश में कोई चेतना नहीं होती, लेकिन चेतनाशील व्यक्तियों में निर्लिप्तता कहीं भी नहीं होती, केवल भगवान को छोड़कर के। तो भगवान सभी वस्तुओं को धारण करते हैं और सभी में हैं, फिर भी निर्लिप्त हैं और चेतना से युक्त भी हैं। तो ये इस प्रकार से ये कैसे होता है? ये भगवान की अचिंत शक्ति है। तो ये जो आकाश का उदाहरण दिया गया है, ये एक सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए दिया गया है, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवान चेतना से युक्त होते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं, निरासक्त रहते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, उम्मीद है। अब तात्पर्य को देखते हैं। सामान्य जन के लिए समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है। अर्थात लोग समझ नहीं सकते कि इतनी बड़ी विशाल सृष्टि को केवल एक ही व्यक्ति कैसे बना सकता है, इतने विशाल बुद्धि कैसे हो सकती है एक व्यक्ति की। किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। तो स्पष्ट है ये जगत कितना कितना भी बड़ा हो लेकिन भगवान से बाहर नहीं है, भगवान के अंदर ही आता है, जिस प्रकार से वायु होती है। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है, जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो भी जगत है वो भगवान की इच्छा के बाहर नहीं है, उनकी इच्छा से ही वायु बहती है और वायु आकाश में स्थित रहती है। सब जगह जो भी क्रिया हो रहा है भगवान की ही इच्छा से हो रहा है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है, उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। ये भी कितना इंटरेस्टिंग है ना कि केवल इच्छा मात्र से भगवान ये सारे कार्य कर देते हैं, उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये भी कितनी अचिंत्य शक्ति है भगवान की। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि वायु बहुत सारे कार्य करती है, पत्तों को हिलाती है और बहुत सारे कार्य करती है, सुखाने का कार्य करती है, धूल लड़ाती है, बहुत सारे कार्य करती है, लेकिन आकाश इससे पूरी तरह से निर्लिप्त रहता है। तो वे निर्लिप्तता के कारण ही भगवान, ये जो गुण है भगवान की निर्लिप्तता निराशक्ति, उस कारण ही भगवान कहते हैं कि सब कुछ में होते हुए भी वो उससे अलग है। उपनिषदों में कहा गया है यद भीष्य वातः पवते, वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है, तैत्तरीय उपनिषद। बृहदारण्य के उपनिषद में भी बताया गया है, कहा गया है एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विद्रतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यौ विद्रतौ तिष्ठतः। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा सूर्य तथा अन्य विशाल लोक घूम रहे हैं। ये भी हमको श्रद्धा से स्वीकार करना होगा, ये समझते हुए कि हमें कोई ज्ञान नहीं है और भगवान इसको रिवील कर रहे हैं इस ज्ञान को, अन्यथा ये समझ पाना कि भाई ये सब कुछ भगवान कर रहे हैं ये बड़ा मुश्किल है। इस संबंध में एक अच्छा आज मैंने एक चीज सुनी, एक साइंटिस्ट का वक्तव्य है कि हम सब लोग ज्ञान के एक पर्वत पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि भगवान के संबंध में है कि इस जगत की सृष्टि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। और जब हम चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंचेंगे तो देखेंगे कि वहां पे ये धार्मिक लोग हैं, जो संत हैं, संत पुरुष हैं, वो उसकी चोटी पे पहले ही जाके बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। अर्थात जो वैज्ञानिक लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इस जगत का स्रोत कौन है, उसका जगत का उनका सृष्टिकर्ता कौन है, वो बहुत प्रयास करने के बाद भी शायद समझ ना सकेंगे कि भगवान कौन है। ये शायद अंदाजा लगा लें कि भगवान है, लेकिन कौन है अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन जो भगवद्गीता को स्वीकार करते हैं वो सहज रूप से जान लेते हैं कि सबके पीछे भगवान हैं और भगवान हैं श्री कृष्ण, और अपने अचिंत्य योग शक्ति के द्वारा इस सबको क्रियान्वित कर रहे हैं। अन्यथा ऐसा अनुभव हमारा है ही नहीं कि कोई व्यक्ति केवल संकल्प करे और उसे सब कुछ होता चला जाए। तो ये तो हमें भगवद्गीता के ही आधार पर स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। कभी कभी कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि सूर्य ठंडा हो रहा है, सूर्य खत्म हो जाएगा, तो ये सब मूर्खता है। इसमें लिखा गया है अशेष तेज, उसका तेज कभी समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि वो तेज भगवान से आ रहा है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। तो सोचिए जब सूर्यदेव को भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना पड़ता है तो हम जैसे शूद्र जीवों को क्या गणना है। हमारे लिए तो और भी ये आवश्यक है कि हम भगवान के आदेशों को समझें और उसके अनुसार चलें। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इस अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। एक छोटा सा रिफ्लेक्शन ये है कि जब हम ये स्वीकार कर लेंगे कि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है और भगवान सबके सुहृद हैं, सच्चे मायनों में हम कंप्लेन करना छोड़ देंगे, एटलीस्ट अपने जीवन में आने वाले सुख दुख के संबंध में। खैर ये कहना आसान है लेकिन इसको अप्लाई करना मुश्किल है, लेकिन अगर जितना हम अप्लाई कर लेंगे तो उतना ही हम भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाएंगे। स्टॉप कंप्लेनिंग, गो बैक टू गॉड। मुश्किल है लेकिन वस्ता यही है कि जो भी इस जगत में हो रहा है किसी के संग वो अच्छा ही हो रहा है, और अगर वो भक्ति कर रहा है, भक्ति में आने का मौका मिल गया भगवान की कृपा से, तब तो सर्वश्रेष्ठ है, तब तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि उसके लिए बहुत अच्छी कृपा है, बहुत अच्छा भगवान कर रहे हैं। इस संबंध में भक्त बोल रहे थे कि यदि हमें भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है और भगवान की सेवा मिल रही है तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि भगवान की कृपा भी हमारे पर है। तो खैर ये तो एक साइड पॉइंट था, पॉइंट ये था कि भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है और उसके बावजूद भी भगवान इस पूरे जगत से निर्लिप्त रहते हैं। हरे कृष्णा।